ബ്രഹ്മം താളം ണമോ സിദ്ധാണം ണമോ ആയിരിയാണം ണമോ വജ്രായാണം ണമോ ലോയേ സവസാഹൂണം മംഗളമയ മംഗളകരണ വീതരാഗ വിജ്ഞാൻ നമോ താഹി ജാതേ ഭയേ അർഹന്താദി മഹാൻ കരി മംഗല കരിയോ മഹാ ഗ്രന്ഥ കരണ കോ കാജ ജാതേ മിലേ സമാജ സബ പാവേ നിജ പദ രാജ വിഷഭവ തരു കാ മൂലൈക ജാനോ മിഥ്യാ ഭാവ താക്കോ കരി നിർമൂലയബ കരിയേ മോക്ഷ ഉപാവ.
आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी विरचित यह अनुपम ग्रंथ राज मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र यहां विराजमान है, उसमें सातवें अधिकार के आधार से जैनाभाषी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। वास्तव में अपन सबकी जो दशा है तो अभिप्राय की अपेक्षा देखा जाए तो इस सातवें में अपन सब कहीं ना कहीं फिट होते, इसलिए अपने लिए ज्यादा उपयोगी है। गुरुदेव को भी इसलिए इतना बहुत पसंद आया। निश्चयाभासी व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये आभासी का मतलब ये है कि जैन शास्त्र पढ़ते हैं, उसको याद भी रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते लिखाते हैं, पर अभिप्राय विपरीत रहता है, इसलिए उसका जो भाव भाषण होना चाहिए वो नहीं होता, तो उन्हें आभासी कहा। कल अपन ने पेज नंबर 218 पर व्यवहारावलंबी जैनाभासी का निरूपण, उसकी जो भूमिका है वो पढ़ी। उसमें पंडित जी साहब ने एक तो ये पॉलिसी मैटर डिस्कस किया कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है तो पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा उसका निषेध नहीं है, बल्कि प्रेरणा है। आप देखेंगे गुरुदेव श्री भी जब तत्व चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो पुण्य भी बंध का कारण है, उसमें धर्म नहीं है, ये बात कहते। और कभी जब आचरण का प्रसंग छिड़ जाए तो फिर वो आचरण की बात भी कहते, खुद ही बताते कि इतने वर्ष की उम्र में हमने अथाणा खाना छोड़ दिया था, ऐसी सब बातें आती। तो ये प्रकरण क्यों लिखा गया है कि जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति में ही संतुष्ट हो गए, ये अपने को अपनी जो अभिप्राय है, अपनी मान्यता है, इस आईने में देखना चाहिए। प्रवृत्ति तो होगी, कहाँ जाएगी वो, इस संसार अवस्था में रहेगा और धर्म की रुचि है तो धर्म कार्य नहीं करेगा तो क्या करेगा, विषय कषाय से तो बचना चाहते हैं, इसलिए तो इतने सारे आयोजन हैं। लेकिन अगर उसमें तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, कृतकृत्य हो गया कि धर्म हो गया, ऐसे ही उसमें मिठास रह गई तो उल्टा हो जाए मामला, तो वो जो व्यवहार प्रवृत्ति है वो मिथ्यात् में निमित्त बन जाती है। जो मोक्ष मार्ग में निमित्त होना चाहिए वो मिथ्यात् में निमित्त बन जाती, इसलिए संतुष्टि का निषेध किया है। प्रयोजन क्या है, मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए, ये वाक्य आया, मोक्ष मार्ग मां सन्मुख करवा माटे ते स्वरूप प्रवृत्ति नो पण निषेध निरूपण करिए छिए। ध्यान देने की बात है, ज्ञानी की भूमिका में भी जो शुभ प्रवृत्ति होती है, तो जब तत्व का स्वरूप बताया जाए तो ज्ञानी के भी वो बंध का कारण है ऐसा जानते कि उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, वो संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट होवे तो व्यवहाराभास हो जाए, और उसमें संतुष्ट नहीं होवे तो कहां संतुष्ट होगा, वो आत्मा में संतुष्ट होगा तो उसको मोक्ष मार्ग होगा। साथ में पंडित जी ने चेतावनी भी दी है, वार्निंग दी है कि देखो भैया हम तो कहेंगे कि ये शुभ भाव में धर्म नहीं है, शुभ क्रिया में धर्म नहीं। गुरुदेव ने धूलमय धर्म न थी है, लेकिन ये सुन के तुम शुभ छोड़ के अशुभ में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा, इसमें उपदेश देने वाले का दोष नहीं है। हम तो मोक्ष मार्ग में सन्मुख कराना चाहते। तो इस तरह ये पूरे व्यवहाराभासी प्रकरण में हर समय ध्यान रखने लायक जो बिंदु है उसकी चर्चा अपन ने कल की, आज उसको थोड़ा रिपीट किया। अभी व्यवहाराभासी में भी चार तरह के व्यवहाराभासी जीव होते, एक कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, तो अपन संक्षेप में इनकी चर्चा करेंगे। सबसे नीचे इसमें दिया है उनकी परिभाषा, कोई जीव तो कुलक्रम बड़े जैनी छे पण जैन धर्मनु स्वरूप जानता नथी, मात्र कुलमा जेवी प्रवृत्ति चालती आवे छे तेज प्रमाणे प्रवर्ते छे। बोलो अब अपन देखें अपने को। हमारे यहां एक मंत्री थे छावड़ा जी, यहां आप सब जानते होंगे उनको अच्छी तरह से, पूनमचंद जी छावड़ा इंदौर के थे, बाद में जयपुर बहुत बहुत जयपुर ही रहने लगे थे। वो एक एक लैंग्वेज बोला करते थे, बाप कमाई और आप कमाई। बहुत से लोग पुण्यशाली होते हैं, करोड़पति के घर में पैदा हो गए तो बाप का धन मिल गया तो वो बाप कमाई है, कोई लोग खुद मेहनत करके करते हैं तो वो आप कमाई है। अपन को ये धर्म मिला है तो ये बाप कमाई मिला है कि आप कमाई मिला है? गुरुदेव ने स्वयं सत्य का अनुसंधान किया, स्वयं पढ़ा, स्वयं विचार किया, स्वयं निर्णय किया, तो कमाई तो धर्म पिता की है वास्तव में। लेकिन अपने पिताजी भी गुरुदेव के पिताजी के पिताजी, तो गुरुदेव के साथ में ही परिवर्तन किया, समझ लो उनने भी निर्णय किया, जो पंथ गुरुदेव ने अपनाया वो ही उनने अपनाया, और अपन उस कुल में पैदा हो गए तो अपने को तो मुफ्त में ही मिल गया ना है। लेकिन ये तो संयोग की अपेक्षा बात है, वास्तव में स्वयं निर्णय करके उसकी सत्यता भासित होवे तो धर्म मिला ऐसा कहा जाए। अकेले कुल में जन्म लेने से क्या होता है, तो इसकी चर्चा इसमें बहुत गहराई से भी है, और ज्यादा विस्तार तो नहीं है, एक दो पेज ही है, लेकिन अत्यंत मार्मिक चर्चा है। वो लिखते हैं, जैम अन्नमति पोताना कुल धर्म मा प्रवर्ते छे तेज प्रमाणे आपण प्रवर्ते छे। ये बहुत मार्मिक बात है। कभी कभी मुझे भी कल्पना होती कि कौन से तो पाप किए होंगे, विराधना की होगी कि भरत क्षेत्र में आए, पंचम काल में आए, वो विराधना में भी कोई कोने में कोई पुण्य प्रकृतियां छुपी होंगी तो जैन कुल मिला, कोई विशेष पुण्य प्रकृतियां छुपी होंगी तो गुरुदेव का समागम मिला, कदाचित अगर दूसरे कुल में पैदा हो गए होते तो आज जैसा वो आचरण करते वैसा हम करते। समझ में आया, कोई नमाज पढ़ते हैं तो कोई रोजा रखते हैं तो कोई कुछ करते हैं, जिसकी जैसी मान्यता हो। अभी तो गुरुदेव ने अमूढ़ दृष्टि वाला प्रकरण चलता था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अमूढ़ दृष्टि वाला, क्या फटकार लगाई है, हैं बहुत कठोर शब्दों में, जैनियों को भी विवेक नहीं है, हैं कोई लोक में कोई बाबा की मान्यता है तो कोई किसी देवता की मान्यता है, कोई किसी की मान्यता है, हजारों लोग जा रहे हैं, तो इतने लोग जा रहे हैं तो कुछ न कुछ उसमें दम तो होगी, आखिर कुछ सत्य तो होगा, तो अपने को जाना चाहिए, कुछ न कुछ तो मिलेगा आखिर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मूड छे, मिथ्या दृष्टि छे, ऐसे अकेला शब्द नहीं बोले, शब्द के पीछे गुरुदेव का फोर्स भी बहुत था उसमें, कि क्या है ये जैन कुल में जन्मा है। अब असल में दिक्कत थी, इसको मैं कल डील करूंगा इन सब बातों को, जो आपका स्पेशल चलने वाला है ना, कि लोगों को ऐसा लगता है हम निंदा करते हैं। अरे भैया, ये किसी की निंदा प्रशंसा करने का प्रसंग नहीं है, ये हमारे भाव का अभाव कैसे हुए उस प्रयोजन की बात है, है? तो जैसे हम अपने कुल परंपरा में प्रवर्तित हैं, सामने वाला भी प्रवर्तित है। इससे दो मैसेज मिल लेना चाहिए, दो संदेश समझना चाहिए। समझ, एक तो ये कि हम धर्मात्मा हो गए ऐसा अहम नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति माता पिता ने सिखा दिया, पाठशाला में सीख गए, संस्कार मिल गए। आजकल तो अपने यहां भी कितना बाल संस्कार शिविर चलता है, बच्चों के शिविर चलते हैं, उनमें अपन संस्कार डालते हैं, तो वो संस्कार के कारण हम धर्मात्मा हो गए। अगर हमने ऐसा माना तो इसमें आ जाएंगे कुल अपेक्षा व्यवहारावासी। दूसरा, सामने वाले से द्वेष नहीं करना। हमारे माँ बाप ने जैसा सिखाया वैसा हम करते हैं, उसके माँ बाप ने, उसके धर्म गुरु ने जैसा सिखाया वो करता है, दोनों एक सरीखे हैं। अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व में, अज्ञान में दोनों समान हैं। थोड़ा और, क्योंकि प्रकरण है इसलिए मैं बोल सकता हूँ, बिना प्रकरण के बोलने की हिम्मत नहीं होती क्या? मस्जिद में जाने वाले में और जैन मंदिर में आने वाले में कोई अंतर नहीं, माफ करना। आधा नहीं सुनना, पूरा सुनना। कोई अंतर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि कुल परंपरा से, बस इतनी बात है। कुल परंपरा से हम इधर आते, लिखा है क्लियर, देखो 250-300 वर्ष पहले का, जैम अन्नमति पोताना कुल धर्म मा प्रवर्त छे, तेज प्रमाणे आपण प्रवर्तते छे। वो दिन भर भूखे रहते हैं, रात में समझ लो चालू करते हैं। अपन लोग समझ लो रात भर नहीं खाते, सुबह चालू करते। हमारी परंपरा ऐसी है, उनकी परंपरा वैसी है, तो उन्हें भी, वो भी कुल परंपरा को फॉलो करने वाले, हम भी कुल परंपरा को फॉलो करने वाले। ये समझ के बिना, यथार्थ निर्णय के बिना एंट्री नहीं होती भाई साहब धर्म के मामले में, वो गेट पर नहीं आता, धर्म का दरवाजा नहीं खुलता, अंदर आने की तो बात दूर रही। तो कुल परंपरा में कोई माल नहीं है। मुझे तो अच्छा लगेगा इसलिए मैं कहता हूं, युगल जी ने गुरुदेव श्री के बारे में एक कविता लिखी है, लो रोको तूफान चला रे, उसमें उन्होंने ये कुल परंपरा का वर्णन किया है। जब गुरुदेव ने ये डिक्लेयर किया कि अभी हम इसमें नहीं रहेंगे, जो हमको नहीं जचता है उसमें नहीं रहेंगे, हम तो छोड़ देंगे, तो समाज वालों ने जो कहा और उसका गुरुदेव ने जो जवाब दिया, उसका बहुत सुंदर खुलासा है। बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, हैं? बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिस पथ में ये जन्म लिया है उस कुल से मुंह को मत मोड़ो, हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, काठियावाड़ का कोई नूर है। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, ये लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी, अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढहाता लो रोको तूफान चला रे। आपने ये जो निर्णय लिया है तो खलबली मच गई पूरे समाज में कि ये क्या हो गया, ये तो ऐसे हो गया मोदी जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जावे, वहां का मेंबर बन जावे। गुरुदेव ने जवाब दिया उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, मां के दूध में या मां के आंचल में से धर्म नहीं होता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। कितना स्पष्ट है, अरे लोक की सीमाओं को तोड़ धर्म का चंदन चलता, चंदन माने रथ, धर्म का रथ तो लोक की मर्यादाओं को तोड़ के चलता है, मतलब लौकिक परंपराओं से बंध के नहीं चलता। ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। इस तरह से कुल परंपरा के विरोध में यदि गुरुदेव खड़े नहीं हुए होते तो आज अपन सब कहां होते हैं? कौन बताता ये सब रहस्य की बातें? तो अपन को तो मिल गया, तो अपने को भी परंपरा से मानना के निर्णय करके मानना, बात तो ये है। ये बात गुरुदेव ने कही है इसलिए मान्य है, कुंद कुंदाचार्य देव ने कही है, शास्त्रों में लिखी है, अरे सब लिखा है। तुमको सत्य भाषित होता है कि नहीं, तुमको भाषित होता है यथार्थ पणा निर्णय करके, तो तुम्हारा दर्शन मोर शिथिल पड़ेगा और धर्म की लेन में आगे बढ़ोगे। और मात्र परंपरा से मानते हैं तो सब मानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? क्या आश्चर्य है इसमें, कितनी गहरी बात है। फिर इसका और भी कई बातें हैं, इसमें निष्कर्ष दिया है नेक्स्ट पेज पर 219 पर सबसे नीचे। तेथी कुल संबंधी विवाह आदि कार्यों मातो कुल क्रमनो विचार करवो। बेटा बेटी की शादी करना होवे तो उच्च कुल देखना, कुल परंपरा देखना, कि रात्रि में तो खाते नहीं है, आलू प्याज तो खाते नहीं है, कैसी रुचि वाले हैं, ये देखना उच्च कुल हमारे कुल गोत्र से कुल से मेल खाते के नहीं। धर्म संबंधी कार्यों में कुल नो विचार ना करो। कितना क्लियर है, आत्मा के हित के लिए आत्मा को देखना, देव शास्त्र गुरु को देखना, उसके लिए कुल परंपरा को नहीं देखना, पिताजी की आज्ञा लौकिक कार्यों में मानना। समझ में आया? अभी मामला उल्टा हो गया, विवाह आदि कार्यों में कुल परंपरा को नहीं देखना वो तो जहां पसंद आवे, जहां लगन लग जावे वहां करना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे सिर फूटे या माथा। समझ में आया है? धर्म के कार्य में कुल परंपरा को देखना। अभी ऐसा हो गया, होना चाहिए उल्टा, ये तो ऐसी दशा है जीव की। तो ये एक व्यवहाराभास का एक बहुत स्थूल प्रकरण जो है वो कुल परंपरा वाला। ठीक इसी टाइप के दूसरा नंबर है 220 पेज पर, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। दोनों में कोई अंतर नहीं, वो कुल वाले भी परीक्षा नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, और ये शास्त्र में जो लिखा है वो भी विचार नहीं करते हैं। खाली शास्त्र में लिखा है इसलिए आत्मा शुद्ध है, आत्मा कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, जो भी है शास्त्र में लिखा है इसलिए प्रमाण है। इन दोनों को मैंने एक आधुनिक नाम दिया है, इनका ग्रुप बनाया है, ये भोले मिथ्या दृष्टि जैसे है मतलब तीव्र कषाय तो नहीं है, मोह तीव्र है। देखो एक मजे की बात, ऐसा बहुत होता है कि चारित्र मोह मंद होवे और दर्शन मोह तीव्र होवे। है जैसे वो क्रिया में धर्म माने, कुगुरु कुदेव में धर्म माने, लेकिन ब्रह्मचर पाले, धंधा व्यापार नहीं करे, घर बार त्याग देवे, बहुत मतलब ऐसा त्यागी जीवन बितावे। समझ में आया? तो विषय कषाय की तो मंदता हो गई, लेकिन देव को देव की पहचान नहीं है, तत्व को तत्व की पहचान नहीं है, स्वपर की भिन्नता की पहचान नहीं है, वितराग मार्ग की श्रद्धा नहीं है, तो मूढ़ता में प्रवर्तित हुए भी मंद कषाय में प्रवर्तता है। ऐसा आता अपने शास्त्रों में, एक जो परमहंस नामा जो गृहित मिथ्या दृष्टि बाबा लोग होते हैं, परमहंस कहलाते हैं, 12वें स्वर्ग तक जा सकते, तो उस जाति का पुण्य होता होगा तब जाते होंगे ना, तो चारित्र मोह की मंदता से ही, कषाय की मंदता में ही तो पुण्य होता होगा है। और कोई जीव को ऐसा होवे कि दर्शन वो मंद होवे और चारित्र मोह तीव्र होवे, मतलब तत्व की रुचि होवे, धंधा पानी नहीं छोड़ पावे समझ में आया? ऐसे भी प्रसंग बनते हैं, किसी को ऐसा कोई चीज की पकड़ है, कोई चीज चाहिए ही चाहिए है, तो उससे वो आदत छूटे नहीं, उसकी कसाय तीव्र है, लेकिन रुचि इधर की है, तत्व सुनने में मजा आती है, निर्णय भी करता है, विचार भी करता है। तो यहां पर परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारा भाषी, तो ये सब क्वेश्चन आंसर इसमें है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा हो तो ये आप संकल्प करें इसको पढ़ने का। ये भोले मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अपन को थोड़ा स्पीड से चलना है, ये संक्षेप में इतना बहुत है। अभी निकालिए 223 पेज। सांसारिक प्रयोजन अर्थे धर्म धारक व्यवहाराभासी, तीसरा नंबर। ये बिल्कुल अलग टाइप के है। ये इसका हेडिंग भी कैसा है, सांसारिक प्रयोजन अर्थे। देखो, संसार में काय का प्रयोजन है, या तो धन का, या यश का, या बाह्य अनुकूलताओं का, यही प्रयोजन है ना संसार में। और क्या चाहिए जीव को सबसे बड़ी बात तो पैसा चाहिए, आजीविका चाहिए, और यश कीर्ति इत्यादि चाहिए, यही चाहिए संसार में, इसी की भूख है सबको। तो जे जीव आजीविका अर्थे मोटाई माटे वा विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचारी कपट थी जैन थाए छे। ऐसा श्रेणिक का हुआ था, समझ में आया? श्रेणिक चरित्र किसी ने पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, बड़ा मजेदार है। एक तो श्रेणिक की लाइफ में जो जीवन में उतार चढ़ाव आए, और फिर उसका एक पुत्र था अभय कुमार तो उसके भी समझ लो श्रेणिक के साथ में बहुत प्रसंग बने हर एक प्रकार के। तो किसी ने चेलना रानी का चित्र दिखा दिया श्रेणिक को, और श्रेणिक मोहित हो गया, हमको तो चेलना चाहिए, जबकि रानी थी पहले और अभय कुमार जैसे पुत्र भी थे उनके श्रेणिक के। तो ये अभय कुमार ने षड्यंत्र रचा और श्रेणिक का विवाह चेलना से कराया। तो उसने अष्टानिका पर्व में चेलना के महल के बाहर बड़ा ऐसा तंबू बंबू डाल के और जोरदार पूजन विधान, जनेश्वर की पूजा, ये सब वहां तक आवाज जावे, और चेलना को ऐसा भरोसा दिला दिया कि हमारा राजा तो जैन धर्म का बड़ा भक्त है। वैसे ऐसी बेईमानी, और बेटा अपने बाप की शादी के लिए षड्यंत्र रच रहा है, आजकल तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने तीव्र कसाई बेटे आज के नहीं है जो बाप की शादी का इंतजाम करें, वो तो उसी समय हो सकते थे है? अपन समझते हैं चौथा काल धर्म काल है, साक्षात तीर्थंकर वर्तते हैं, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, साधक जीव रहते हैं, दिगंबर संत विचरते हैं, इसलिए धर्म काल है संयोग की अपेक्षा। लेकिन सब जीवों की परिणति धर्म वाली ही होती है, ऐसा नहीं है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज का पंचम काल का जीव तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता है, और चौथे काल में जीव सातवें नरक तक भी जाते थे। तो कौन ज्यादा हिम्मत वाले, मतलब पुरुषार्थ में उग्रता। आज भी समझ लो मिथ्या दृष्टि होवे तो अभी तो कोई श्रावक भी होवे तो पंचम गुण स्थान वाला तो सोलहवें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता है, और उस समय का द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि सोलहवें स्वर्ग के ऊपर नौ गृहयक है, तो नौवें गृहयक तक जा सकता है। तो पुण्य में भी उग्र पुरुषार्थ, पाप में भी उग्र पुरुषार्थ, और धर्म में उस समय तो जीव श्रेणी चढ़ के और मोक्ष भी चले जाते, और अभी तो छठवां सातवां गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। तो पुरुषार्थ की हीनता अभी हो गई, तो उस समय पुरुषार्थ की उग्रता थी तो वो पाप में भी थी, पुण्य में भी थी, और धर्म में भी थी। खैर, तो कोई कपट से जैन धर्म धारण करे, अंदर में श्रद्धा नहीं है बल्कि विरोध है, लेकिन भय से, आशा से, कोई दूसरे कारणों से, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने को कह दो कि हम जैन हैं, क्या नुकसान है अपने को, ऐसा तो वो ते तो पापीज छे, गजब है। क्यों? कारण के अति तीव्र कषाय थताज एवी बुद्धि थाय छे, तेमनु सुलझवू पण कठण छे। जितना सर्टिफिकेट दिया उसको है। जैन धर्म तो संसार नाश ना अर्थे सेवामा आवे छे, ये स्लोगन। जैन धर्म तो संसार का नाश, संसार का नाश माने ये जम्बूद्वीप का नाश हो जाएगा, समीर पर्वत का नाश हो जाएगा, स्वर्ग नरक का नाश हो जाएगा। अरे ये संसार नहीं है भैया, मोहराग द्वेष का परिणाम, उसी का नाम संसार है। और संसार का नाश माने मोहराग द्वेष का नाश होना है। कोई बाहर परद्रव्य का नाम संसार नहीं है, कोई क्षेत्र का नाम संसार नहीं है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव वो तो पर वस्तु है। तो संसार यानि दुख का नाश, मोह का नाश। उपजे मोह क्या है? विकल्प थी समस्त आ संसार। और हाँ, अंतर्मुख अवलोक ता विलय थता नहीं वार, ऐसा है। तो ये सूत्र बताया, ये याद रखने लायक। जैन धर्म का सेवन क्यों करना? अभी कल आएगा शायद, क्वेश्चन आएंगे। मैंने सुना लोगों ने काफी तैयारी करके रखी है। धर्म क्यों करना, मंदिर क्यों आना, इसी मंदिर क्यों आना, दूसरे मंदिर क्यों नहीं जाना है, प्रयोजन विचारो। सब 100 सवाल का एक जवाब है, प्रयोजन विचारो। तुम सोचो क्यों करना, कॉमर्स कॉलेज में क्यों भर्ती होना, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों भर्ती होना, मेडिकल कॉलेज में क्यों भर्ती होना, प्रयोजन विचारो। समझ में आया? तो ये वितराग देव का कहा हुआ धर्म ये क्यों मानना, ये संसार का नाश करने के लिए सेवन किया जाता है। जे ए बड़े सांसारिक प्रयोजन साधवा इच्छे छे, ते मोटो अन्याय करे छे। ये कुदरत के विरुद्ध है। यानी जो जो चीज आत्महित के लिए उपयोगी है, उसको तूने उल्टे अहित में निमित्त बनाया, संसार बढ़ाने में निमित्त बनाया, तो इससे बड़ी मूढ़ता। और सबसे बड़ी बात, वीतरागी देव गुरु धर्म की इससे अधिक विराधना और क्या हो सकती? ते तो मिथ्या दृष्टिज छे, ऐसा ये फार्मूला है। सांसारिक प्रयोजन से लौकिक सुविधाओं के लिए, लौकिक इसके लिए। ऐसा एक प्रसंग बना था, हम जब जयपुर में थे तो दिल्ली में एक सज्जन थे सुरेंद्र कुमार जी अग्रवाल, वो जयपुर बहुत आते थे। जयपुर पीछे जो बिल्डिंग है वो भी बिल्डर थे, तो उनने वो सब बनाई और काफी संस्था से बहुत जुड़े थे। तो इतने ज्यादा कि हम लोग उन्हें ताऊ जी बोलते थे। तो दिल्ली जाते थे तो उनके यहीं ठहरते थे वो मॉडल बस्ती में। तो एक बार उनका बेटा बोला कि मेरा एक दोस्त है, वो 10th पास हुआ है, अभी उसको बड़ी चिंता है कि मैं कौन सी लाइन में जाऊं, कॉमर्स लूं कि ये लूं कि वो लूं। तो मैंने कहा तूने क्या सलाह दी? मैंने कहा तू तो पंडित बन जा। तो क्यों? अरे आजकल पंडितों का बहुत अच्छा मार्केट है, ऐसा उसने जवाब दिया उस बच्चे ने। वो भी समझ लो छोटी उम्र का था उस समय। और क्या साहब, कहीं भी जाना हो तो फ्री में जाना, फ्री में आना, फ्री में गाना, फ्री में खाना। और थोड़ा ऊंचा पंडित हो जाए तो बढ़िया, यहाँ हिंदुस्तान में समझ लो 45 डिग्री 47 डिग्री चलता हो तो वह अमेरिका घूमने चले जाओ, ऐसा बोला उसने। मैंने कहा धन्य है तेरी बुद्धि, तूने पंडित बनने की सलाह इसलिए दी लोगों को। क्या है तमाशा, वो लोगों को ये लाभ दिखता है, आश्चर्य की बात। जिसको ये समझ लो शास्त्री करने में या इस लाइन में जैन धर्म पढ़ने में, यूं कहो आज की भाषा में पंडित बनने में ये फायदा दिखता है, उसने क्या जैन धर्म पढ़ा, वो तो उल्टा हो गया मामला। अरे हम तो सबको प्रेरणा इसलिए देते हैं कि आप 5 साल शास्त्री पढ़ लोगे। डॉक्टर साहब ने मेरे को एक महीने भर्ती नहीं हुआ था विद्यालय में, 4 महीने तक भर्ती नहीं हुआ था। और उसके पहले तो 10 लक्षण में जयपुर में प्रवचन करने के लिए निमंत्रण दिया था, तो टोडरमल स्मारक में ही प्रवचनकार बन के गया था। तो उनने एक बात कही कि देखो, तुमको अगर सारा जीवन ये तत्व प्रचार की लाइन में बिताना है, धंधा व्यापार का तुम्हारा विचार कम है, तो ठोस अध्ययन होना चाहिए। अकेले ऊपर ऊपर का आहा भगवान आत्मा और देह से भिन्न है और आग से भिन्न है और प्रेरणा देना है, तू नो चला जाएगा, तू मर जाएगा, तू ऐसा हो जाएगा, तेरा भला नहीं, ये बातों में कोई माल। एक प्रवचन इसके लिए बढ़िया हो सकता है, 365 दिन का नहीं हो सकता। उसके लिए तो जो न्याय है, व्याकरण है, थोड़ा बहुत उसका बेस हो गए गहराई से, जैसे गुरुदेव अमृतचंद्राचार्य की टीका की गहराई में डूब डूब करके अर्थ निकालते हैं, वैसा गहरा भाव भाषण होना चाहिए, तो तुम्हारे लिए भी लाभदायक रहेगा और तुम भी समाज को कुछ दे सकोगे। उन वाक्यों ने मुझे प्रेरित किया वो महाविद्यालय में भर्ती होने को, नहीं तो मैंने तो रिजेक्ट कर दिया था, ये तो पंडिताई की लाइन है, अपने को पंडिताई की लाइन में नहीं जाना, और उल्टा हो गया था। पंडिताई माथे चढ़ी, ऐसा दोहा बोलता था मैं, पंडिताई माथे चढ़ी पूर्व जन्म के पाप, हृदय में बैठी तो पाप नहीं, हृदय में बैठी तब तो निहाल हो गया, माथे चढ़ी यानी उसका अभिमान चढ़ा, पंडिताई माथे चढ़ी पूर्व जन्म के पाप, औरों को समझाते रहे कोरे रह गए आप। ऐसा है तो अपने को पंडित नहीं बनना, पंडित नहीं बनना, पंडित नहीं बनना, ऐसा था माइंड में। और थोड़ा सोनगढ़ में हमारे एक दो मित्र ऐसे थे जिनके निमित्त से मुझे द्रव्य दृष्टि प्रकाश का नशा लग गया था, तो आज भी है वैसा ही, उसमें कोई कमी नहीं पड़ी बिल्कुल। जो दृष्टि के विषय की बात मुझसे तो कोई पूछता है तो थोड़ा अनुभव संबंधी प्रश्न पूछता है ना, तो मैं उसको दो चीजों का सुझाव देता हूं पढ़ने का, एक तो स्वानुभूति दर्शन और एक द्रव्य दृष्टि प्रकाश, कि ये पढ़ो तुम तो तुमको पता चलेगा निर्णय, तत्व निर्णय कैसा होता है, हैं? तो उसके चक्कर में समझ लो उस समय वैसा चिंतन था, हमें तो बस यही करना है, आत्मा का करना है, पंडिताई के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जब वो बात ख्याल में आई कि सारा जीवन इसमें बिताना है तो आगम का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकें, इसके लिए ये शास्त्री तो एक बहाना है, वो तो डिग्री है यूनिवर्सिटी की, लेकिन पढ़ाई जैन धर्म की गहरी हो जाएगी। तो पंडित बनना यानी जिनवाणी के जिन वचनामृत रस का पान करने के लिए बनना, कि सुविधा के लिए बनना, सुविधा तो उदय प्रमाणे मिलेगी, ख्याल में आया उदय जैसा होगा तदनुसार मान सम्मान सुविधा सब मिलेगी, लेकिन अगर वो हमारा लक्ष्य हो गया, वो हमारा उद्देश्य हो गया कि उसके लिए ये करना, तो बहुत बड़ा पाप है, पुण्य भी नहीं, धर्म की तो बात छोड़ो, पाप है। ऐसे जीवों के लिए मैंने एक लैंग्वेज डेवलप की, ये बेईमान मिथ्या दृष्टि। कैसे है वो दो कैसे थे वो, जो कौन कौन से, कुल अपेक्षा धर्मधारक और परीक्षा रहित शास्त्रानुसारी धर्मधारक, वो भोले मिथ्या दृष्टि थे कि जो कुल में चलता है सो चलता है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंटेंसली छल करके जैनी बनते नहीं है, जैनी दिखते हैं, समझ में आया, धर्म करना नहीं है, धर्म करते हुए दिखना है, दुनिया को दिखाना है, जगत को दिखाना है और उसका लाभ लेना है लौकिक। तो लाभ तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो उसके पुण्य पाप के उदय पे है, लेकिन भव हार जाएगा भाई, फिर दोबारा उसको जैन कुल भी कितने काल बाद मिलेगा ये तो केवली जानते हैं, इसकी तो अपन क्या बात करें। ये बेईमान मिथ्या दृष्टि, वो धर्म का लाभ आत्महित के लिए नहीं लेना चाहते, वो धर्म की मार्केटिंग करना चाहते, धर्म को बेचना चाहते, और इसलिए भी आज की पीढ़ी धर्म से दूर रहती, उसको ये पसंद नहीं, मार्केटिंग पसंद नहीं, सहजता सरलता चाहिए, ओरिजिनल जो होना है वो चाहिए। मार्केटिंग के नाम पे दुनिया अपने माल की करती, तुम सब एक ही जैसे हो गए, ये भी बिजनेस हो गया, ऐसा हो गया, तो ये बेईमान मिथ्या दृष्टि। चलो अगर बेईमान मिथ्या दृष्टि है दुनिया में तो ईमानदार मिथ्या दृष्टि भी होंगे, हैं? उसका वर्णन देखो, ये आया 225 पेज, बड़ा बड़ा हेडिंग है, धर्म बुद्धि थी धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये तीसरे और चौथे नंबर के बिल्कुल रिवर्स है, हैं मिथ्या दृष्टि दोनों, लेकिन दोनों के अभिप्राय विपरीत होने पर भी दोनों की समझ लो इंटेंशन अलग अलग है। एक को धर्म का लौकिक लाभ लेना है और इसको धर्म का लौकिक लाभ नहीं लेना है। इसे तो धर्म के बदले में संसार का अभाव करना है, चार गति का अभाव करना है। समझ में आया? देखो, बड़ी केटलाक धर्म बुद्धि थी धर्म साधे छे। ये धर्म बुद्धि क्या? अभी तो व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि है, उसको धर्म बुद्धि कहां से हो गई? धर्म बुद्धि का मतलब धर्म से धर्म की मार्केटिंग नहीं करना है, दूसरों के लिए धर्म नहीं करना है, जो करना है सो इसमें मेरा आत्मा का हित है, भले वो गलत डिसीजन है। व्रत ब्रह्मचर्य पालना तो मेरे को विषय कषाय से बचना है और इससे मुझे धर्म हो जाएगा। मुनि होना है, मान लो निर्ग्रंथ होना है, कपड़ा छोड़ना है, जंगल में रहना, ये यही धर्म है। बिना मुनि बने मोक्ष होता नहीं है, इसलिए मुझे मुनि होना। समझ में आया? और तीसरे नंबर वाला मुनि होएगा, तीसरे नंबर का व्यवहारभासी, वो इसलिए होगा कि फिर हजारों लोग जय जयकार करेंगे और फिर मेरा भी टीवी पे प्रवचन आएगा और मेरा भी इतना शिष्य बन जाएंगे, मेरा भी एक स्टैंडर्ड हो जाएगा समाज में कि मैं भी कोई चीज हूं। वो इस भावना से करेगा। और ये मुनि बनेगा तो ये इस भावना से बनेगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई माने चाहे नहीं माने, कोई आए चाहे नहीं आए, सुने चाहे नहीं सुने, मुझे तो मेरे हित के लिए ये काम करना। ऐसा है भैया, हाँ? धर्म बुद्धि इसका नाम है। जो धर्म के बदले सच्चा सुख चाहता है, संसार से छूटना चाहता है, इसके लिए धर्म करता है, उसका नाम है धर्म बुद्धि। ठीक है? फिर धर्म साधे छे, इसका क्या मतलब? एक तरफ तो आप कहते हैं व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है, अभी धर्म कहां से साधेगा? ये व्यवहार धर्म की बात है। धर्म साधे छे माने पूजा करता है, पाठ करता है, त्याग करता है, व्रत उपवास करता है, उस भूमिका में जिसका जो जिस तरफ का रुचि है, अरे स्वाध्याय भी करता है। ख्याल में आया? धर्म साधे छे काय के क्यों क्यों का धर्म बुद्धि से हा? परंतु अभी ये टोडरमल जी का परंतु बड़ा खतरनाक। कई लोगों ने तो इसमें गिन के देखा है, अब मुझे वो फिगर याद नहीं है, कैलकुलेशन किया है कि कितनी जगह परंतु शब्द आया। ऐसा परंतु मैंने जो किया अभी उसके रिवर्स लग गया। निश्चय धर्म ने जानता नथी। निश्चय धर्म यानी यथार्थ स्वाश्रित वास्तविक स्वरूप, वीतराग धर्म, स्वानुभूति धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म, ये निश्चय धर्म इसको जानते नहीं है। ते थी तेओ अभूतार्थ रूप धर्म ने साधे छे। क्या मतलब इसका? अभूतार्थ यानी जो धर्म तो है नहीं, पर धर्म की पैकिंग है, ये पैकिंग में ले लो उसको, है ये व्रत सील संयम इत्यादि जो धर्म तो है नहीं लेकिन धर्म के साथ में रहता है। इसके बिना धर्म दिखेगा नहीं दुनिया में। क्या बोला? बोले चौथे गुण स्थान में व्रत नहीं होता, लेकिन एक लेबल तो आ जाता है, अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग इतना तो आ ही जाता है, सप्त व्यसन का त्याग इतना तो आ ही जाता है, मध्यमास मधु पांच उदंबर फल का त्याग इतना तो आ ही जाता है, प्रतिज्ञा नहीं होती। समझ में आया? गुरुदेव ने कल परसों ये प्रसाद सिद्ध उपाय में ही सुन लो, चौथा गुण स्थान जो दर्शन प्रतिमा, अरे अकेले वो व्रत नहीं आया, दूसरी प्रतिमा है व्रत, पहली प्रतिमा है दर्शन। तो दर्शन में सम्यक दर्शन के साथ में उतनी विशुद्धि आ जाती है कि गुण स्थान पांचवा हो जाता है, लेकिन तो भी व्रत नहीं है अभी, वो दूसरी प्रतिमा होएगा तब व्रत होंगे। 11 स्टेप हैं, 11 11 प्रतिमा बोलते हैं ना, 11 स्टेप हैं। इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि एक लड़का चौथी क्लास पास हुआ और पांचवी कक्षा में आके पहले दिन उसका स्कूल स्टार्ट हुआ और पांचवी में आके बैठा, तो वो भी पांचवी का स्टूडेंट है। और एक लड़का जिसने पांचवी का एग्जाम दिया है, अभी छठवी में गया नहीं है, छठवी का कोर्स चालू नहीं हुआ है, लेकिन पांचवी का अंत तक कोर्स पूरा कर लिया। कहने के लिए दोनों पांचवीं कक्षा के हैं, लेकिन एक हाई लास्ट लेवल पे पहुंच गया और एक अभी फर्स्ट दिन ही बैठा है। तो दर्शन प्रतिमा वाला पांचवें गुण स्थान में पहली सीढ़ी पे है, और वो ग्यारहवीं प्रतिमा वाले जो छुल्लक जी अलग जी हैं, वो पांचवें गुण स्थान की लास्ट सीढ़ी पे। गुण स्थान दोनों का एक सरीका, अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय का छयोपसम, समझने की बात है भाई थोड़ी है। तो देखो, अभूतार्थ रूप धर्म ने साधे छे। अभूतार्थ यानी क्या, कि जिसमें धर्म तो है नहीं, लेकिन जो धर्म के साथ में रहता है, ऐसे अभूतार्थ धर्म को क्रिया में साधता है। अर्थात मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने मोक्ष मार्ग जानी तेनु साधन करे छे। ये परमार्थ की तो खबर है नहीं ना, इसलिए जो व्यवहार दिखता है, जो व्यवहार क्रिया में दिखता है, उपदेश में आता है, तो वो ही करने में संतुष्ट हो गया। इसकी गलती क्या है, गलती ये है कि जो पहले बताई थी कि वो व्यवहार क्रिया में संतुष्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इनका नाम रखा ईमानदार मिथ्या दृष्टि। तभी तीन हो गए, इसमें चार बताए, दो का अपन ने एक ग्रुप बनाया, एक भोले मिथ्या दृष्टि, एक बेईमान मिथ्या दृष्टि और एक ईमानदार मिथ्या दृष्टि, तीनों। लेकिन हर एक की वृत्ति में थोड़ा फर्क है। अभी अपने को देखो, इसमें एक पंक्ति आई, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने मोक्ष मार्ग जानी तेनु साधन करे छे। सुनना ध्यान से, ये भी समझ लो सूत्र है, गाथा है। अब बाद में इसका जो विस्तार है, वो सम्यक दर्शन में क्या गलती करते हैं, देखो हेडिंग बड़ा विचित्र बनाया। हेडिंग तो ऐसे बनाया, सम्यक दर्शन नु अन्यथा पणु। तो सम्यक दर्शन में अन्यथापना हो जाएगा तो वो सम्यक तो रहेगा कि मिथ्यात हो जाएगा। बस यही है भाई, लोग व्यवहार में भी बोलते कुछ हैं और आशय कुछ और होता है। सम्यक जैसे कहते हैं, जरा मेरे यार एक कोई गोली है सिर दर्द की, दवा देना जरा, तो दवा सिर दर्द की होती है कि सिर दर्द मिटाने की होती है, समझ में आया ना। लेकिन लैंग्वेज तो ऐसी बोली जाती है कि सिर दर्द की दवा देना, बोलो आप है। इसी तरह से सम्यक दर्शन का अन्यथापना, यानी सम्यक दर्शन के बारे में ये व्यवहाराभासी जीव की मान्यता में जो अन्यथापना है। एक फार्मूला समझ लेना भैया, लोक में तो सब समझते हैं, लैंग्वेज हमेशा जो है सिकुड़ने की टेंडेंसी रखती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, विस्तार पसंद नहीं है। जैसे पहले पापा जी थे, अब पाजी हो गए, अकेले पा रह गए। समझ में आया ना, है? पहले डैडी थे, अब डैड हो गए बेचारे, मम्मी की मॉम हो गई, अब कहां तक जाएगा ये जीव। समझ में आया ना, पहले बड़े आदर से लोग पूरा बोलते थे, पंडित जी साहब आइए पधारिए, अभी पंडित जी इतना कौन बोले, तो पंड साहब, अजब हो गया। आप देखो है, मैंने बोल अरे काका साहब, ऐसे हमारे जो इधर के है ना, इंदौर उज्जैन तरफ के हमारे मित्र लोग बड़े विनय से पूरा बोलेंगे काका साहब, अब काक साहब, का साहब, दा साहब, अब दीदी नहीं बोलते, दी बोलते अकेला, पता नहीं कुछ दिनों बाद बोलना ही बंद हो जाएगा, क्या होगा। दी, समझ में आया, बोलो। तो ये भाषा विज्ञान का विषय है, भाषा सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती। तो इस ऐसे ही संक्षेप में बोला जाता है, जैसे पीएम आ रहे, सीएम आ रहे, अब हिंदी में भी हो गया, सुको ने कहा, ये सुको कोई होता क्या, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट लिखने में कितनी स्पेस लगेगी, तो उसको उन्होंने सुको कर दिया। समझ में आया ना, ऐसे ही समझ लेना। ऐसे सम्यक्त का अन्यथा रूप ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सम्यक्त के बारे में व्यवहाराभासी जीव की विपरीत मान्यता, इतना छुपा है इसके अंदर। लेकिन एक बात है, शॉर्ट फॉर्म बोलने वाले को भी मालूम होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तब तो बोलेगा। सुनने वाले को भी मालूम होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तब तो वो समझेगा, नहीं तो ये कुछ बोलना चाहेगा वो कुछ और समझेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा है। तो इसमें ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक जीव के तीन तरह की भूलें बताई, कौन कौन सी? सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक ज्ञान के बारे में, सम्यक चारित्र के बारे में। तो सम्यक दर्शन के बारे में, जो सम्यक तो है नहीं, सम्यक की पैकिंग है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा, ये दो पॉइंट मुख्य हैं, समझ में आया? तो उसने देव सात गुरु की पूजा करता है, भक्ति करता है, हाँ हमारे अरंत देव ही सच्चे हैं, पंच परमेष्टि ही सच्चे हैं, इसके अलावा किसी और को मानना नहीं। वो छड़ाले में आता है, कुगुरु कुदेव कु ब्रस सेवक की नाही प्रशंस ओचरे है, जिन श्रुत जिन जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिने ना नमन करे है। तो पक्का उसमें पालन करता है, कहीं दूसरी जगह सारी दुनिया जाती हुए तो भी खुद नहीं जा, हमको क्या प्रयोजन है, उधर हमारा क्या प्रयोजन है? कोई चमत्कार, गुरुदेव ने अभी बोला, कोई चमत्कार दिखाता हो, कोई देवता कहीं चमत्कार दिखाता हो, अरे ये दुनिया तो इतनी पागल है चमत्कार के पीछे, कहीं गणेश जी दूध पी रहे हैं तो कहीं कोई झाड़ में कोई देवता दिखने लगे हैं, तो कहीं कहीं कुछ दिखने लगा है, हैं? तो लोग अरे बाप रे इतना चमत्कार, कहीं भगवान को पसीना आ गया। समझ में आया? ये मूर्ति को पसीना आ गया तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। वो डॉक्टर साहब बताते इंदौर की एक घटना, वहां पे मंदिर बनना था, बड़ी मुश्किल थी, पूरा नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, फिर एक दो साल बाद वो गए तो बड़ा चकाचक मंदिर बन गया। यार कैसे बन गया? हमने यहाँ पे ऐसा चमत्कार हुआ साहब कि एक बार भगवान को पसीना आ गया, तो इतनी भीड़ लगी और इतना दान आया कि चकाचक बढ़िया मंदिर बन गया। तो बोले कि अपना मंदिर बनवाने के लिए भगवान को भी पसीने ही आ गया। कहाँ जा रही दुनिया? देख, स्वाध्याय नहीं, प्रयोजन का विचार नहीं, दो चीज की कमी है। कदाचित परंपरागत स्वाध्याय होवे तो भी प्रयोजन का विचार नहीं, मूल चीज तो ये है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो वो टॉपिक ज्यादा आए नहीं तो मैं तो जहां भी दस लक्षण में जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मुझे इस बात के लिए याद रखना कि एक पंडित आया था, वो क्यों की बीमारी लगा के गया, कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। समझ में आया? कम से कम धर्म के मामले में, धर्म के क्षेत्र में, अरे भले वो क्लियर नहीं हो लेकिन प्रश्न तो खड़ा करो कि खड़े होके पूजा करना तो क्यों करना, बैठ के करना तो क्यों करना, अभिषेक करना तो क्यों करना, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। आप जो भी काम करेंगे अगर उसके पीछे विवेक होगा, प्रयोजन का विचार होगा, तो वो क्रिया प्राय सही ही होगी अगर प्रयोजन और विवेक के साथ में की जावे, नहीं तो अंधाधुंध तो जो चलता है सो चलता है, हैं? तो ये सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप माने क्या? सम्यक तो है नहीं लेकिन सम्यक का व्यवहार, सम्यक की पैकिंग, सम्यक का निमित्त, सम्यक का सहचारी, ऐसा लिखा है उभयवासी में, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त अथवा सहचारी है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार। समझ में आया? व्यवहार कोई अकेली जड़ की क्रिया में व्यवहार होता है ऐसा नहीं, वो तो ज्ञान ऐसा जानता है कि उपचार से इसको मोक्ष मार्ग कहा है। जैसे मामा के दोस्त को भी मामा कहते हैं, मामा के गांव के पड़ोसी को भी मामा कहते हैं, वैसे ये जो सम्यक तो है नहीं लेकिन अकेला तो, वैसे तो सम्यक तो बहुत सी चीजों में नहीं है, तो चाहे जिसको व्यवहार कह देंगे क्या, उसका निमित्त निमित्त संबंध होना चाहिए। वो सम्यक दृष्टि के जीवन में वो चीजें होती हैं, भले वो जैसे आदमी कपड़ा पहनता है लेकिन कपड़ा खुद तो आदमी नहीं है, हम कपड़ा पहनते हैं लेकिन कपड़ा जुदा है और हम जुदे, ऐसे सम्यक दर्शन का कपड़ा, सम्यक का सहचारी, ये देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, समझ में आया, वितरागी देव गुरु की, तो वो विकल्प है, वो राग है, तो भी वो सम्यक दृष्टि को अनिवार्य रूप से होता है, इसलिए कहते हैं कि ये सम्यक का व्यवहार, तो व्यवहार सम्यक हो गया। लेकिन व्यवहाराभासी इसी को ही यथार्थ सम्यक मान लेगा। जैसा कल कहा था ना, पैकिंग कोई माल समझ लेना, तो इसने सम्यक की पैकिंग कोई माल समझ लिया। इसका डिटेल इसमें बहुत बढ़िया है, वो इसमें से पढ़ने लायक है। फिर देखो सम्यक के अंतर्गत देव भक्ति में क्या गलती होती है, गुरु भक्ति में क्या गलती होती है, शास्त्र भक्ति है पर भक्ति में भी गलती है। भक्ति नु अन्यथा पणु लिखा ना, देव भक्ति नु अन्यथा पणु, गुरु भक्ति नु अन्यथा पणु, शास्त्र भक्ति नु अन्यथा पणु, फिर तत्व श्रद्धानु अन्यथा पणु, फिर वो सात तत्व संबंधी भूल वाली बात आई है। डिटेल काफी इसमें है, वो आप ग्रंथ में से पढ़ें और अन्यथा गुरुदेव के प्रवचन सुने पढ़ें, सब इसके बहुत इसमें मैटर है। अभी मुझे सेकंड स्टेप सम्यक ज्ञान नु अन्यथा पढ़ू, थोड़ी चर्चा इसकी करते। सम्यक ज्ञान नु अन्यथा पढ़ू, ये 239 पेज 239। शास्त्र मा सम्यक ज्ञान माटे शास्त्राभ्यास करवा थी सम्यक ज्ञान थवू कयू छे। छेड़ाले में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। जिनेन्द्र के द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास करना, अब अभ्यास में पढ़ना लिखना सीखना सिखाना परीक्षा देना, अरे टोटल मिली तो यहां तक किया कि शास्त्र अभ्यास करने वालों की अनुकूलता प्रदान करना, ख्याल में आया है ना, उसको कोई कमी हो कोई चीज की जरूरत हो तो उसको उसकी पूर्ति कर देना, ऐसा तो वो सम्यक ज्ञान का है। ते थी ते शास्त्र अभ्यास मा तत्पर रहे छे, त्या सीखवू सीखवू याद करवू वाचवू भड़वू, ये सब अपने को देख के लिखा होगा तब अपन इसमें फिट बैठते कि नहीं बैठते, इत्यादि क्रिया मा, देखो क्या बोला इसको, ये भी क्रिया है भाई, जैसे विरतशील संयम क्रिया है, पूजा पाठ क्रिया है, वैसे ये सीखना सिखाना पढ़ना पढ़ाना ये भी क्रिया है, ये कोई धर्म नहीं, ये समझना है। क्रिया मा तो उपयोग ने रमावे छे, परंतु तेना प्रयोजन ऊपर दृष्टि नथी। गजब बात है, वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने टोडरमल जी के लिए आचार्य कल्प शब्द बोला होगा, उसने मोक्षवा प्रकाशक का सातवां और आठवां दोनों अधिकारों को कितनी गहराई से पढ़ा होगा। आचार्य कल्प, कल्प तो इसलिए लगाया कि कोई उन्हें पंच परमेष्ठी वाला ऐसा नग्न दिगंबर आचार्य नहीं समझ ले वे, कंफ्यूजन नहीं हो वे, तो आचार्य वत आचार्य कल्प, ये आचार्य मतलब लीडर होता है, संघ का नायक होता है, तो ये जिनवाणी के नायक के रूप में हमारे सामने आए हैं। कितनी सुंदर सिखामण, प्रयोजन के ऊपर दृष्टि नहीं है, ये चलता है सो चलता है, इसमें जरा हमको चांस मिल गया, लोगों ने कहा कि आप ये पढ़ाओ आप ये करो बहुत अच्छा है, हमको भी अच्छा लगा, तो क्यों अच्छा लगा भाई, जैसे बोल गए यहाँ आपको बंबई में कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा, तो क्यों लगा, क्यों क्यों को कभी नहीं छोड़ना भैया, उससे आप बहुत सारी विकृतियों से बच जाएंगे, ये हमेशा याद रखना है। पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते, पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते, समय सार पढ़ना तो क्यों पढ़ना, नियम सार पढ़ना तो क्यों पढ़ना, गौमर सार पढ़ना तो क्यों पढ़ना, अभी बहुत पढ़ लिया अभी विचार करना तो क्यों करना, हर चीज में क्यों लगा, अनुभव करना तो क्यों करना, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, दुखों से छूटने के लिए करना, हर क्यों का जवाब आना चाहिए। मान लीजिए एक बार नहीं आए तो जो जवाब आए उसमें भी क्यों लगाओ, दो चार बार लगाओ क्यों, तो अंत में आप मूल प्रयोजन तक मूल वस्तु के स्वरूप तक पहुंच ही जाओगे, ऐसा ये समझ लो अंतस्तल तक पहुंचने का फार्मूला है, क्यों वाला, क्यों लगाना, सब लोग समझ लेना भैया, प्रैक्टिकल करना, क्यों लगाना है, घी खाना तो क्यों खाना और नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, हरेक में लगाना, कितना सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तो देवलाली में एक एक पंक्ति पंक्ति का इसका छिंदवाड़ा में भी किया था और फिर देवलाली में आके दोबारा इसको लिया पूरा ग्रंथ एक एक पंक्ति पंक्ति। तेन तेमा प्रयोजन ऊपर दृष्टि न थी, आ उपदेश मां मने कार्यकारी सू छे ते अभिप्राय न थी। अभी देखना भैया, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, स्वयं शास्त्राभ्यास करीने अन्य ने उपदेश आपवानो अभिप्राय राखे छे। ये बीमारी जब हम लोग शुरू में पहली बार सोनगढ़ गए और गुरुदेव के व्याख्यान में मजा आती थी, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये चीज कठिन है या मेरी समझ में नहीं आ रही है, ऐसा अकेले एक क्रमबद्ध पर्याय को की अटक लेके आए थे कि 9 नंबर की पर्याय में मिथ्यात है तो 10 नंबर की पर्याय में अपने आप सम्यक्त कैसे आ जाएगा, वो क्रम क्रम है तो कैसे आ जाएगा। फिर वो ज्ञान स्वभाव गई स्वभाव पुस्तक पढ़ी तो उसका समाधान हुआ। वो सब बातें हैं, स्वभाव में धर्म नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, ये चीजें ऐसा लगा कि ये तो समझ लो हम तैयार ही थे ये सुनने के लिए ऐसा। तो कोई भी बात आवे तो नोट करें, काय के लिए नोट करें, अपने गांव में जाएंगे तो ये सुनाएंगे लोगों को ये है। तो खेमचंद भाई आप सब जानते होंगे, तो हम उनकी क्लास में बहुत बैठते थे, तो शिविर में पहला लेक्चर उनका जो होता था उसमें हमेशा एक दोहा बोलते थे, नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है ये ज्ञानी का देश। कि उपदेश देने देना अलग बात है, अपन तो समझ लो एक प्रकार की धर्म चर्चा है, पर उपदेश देने का अभिप्राय नहीं रखना। देखो शास्त्र अभ्यास करीने अन्य ने उपदेश आपवानो अभिप्राय राखे छे, अने घणा जीवो उपदेश माने त्यां पोते संतुष्ट थाय छे। इतने लोग आते, नए नए लोग बहुत आते, बहुत खुश होते। कभी किसी का फोन आ जाए ऐसा, आपकी हम ये प्रवचन सुनते हैं हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा समझ में आता है, तो वो सुन के अपने को ऐसा आनंद आता है जैसे भव्य जीव को दिव्य ध्वनि सुनने में आनंद आता है, है? अरे तो इसमें क्या हो गया, क्यों समझ संतुष्टि, क्यों, क्या उससे अपने को सम्यक्त हो जाएगा, है? उससे अपना लाभ हो जाएगा, विचार करने की बात है भाई। देखो क्रिया पे प्रहार नहीं है, क्रिया की मीमांसा नहीं है, अभिप्राय की बात है, पण ज्ञानाभ्यास तो पोताना अर्थे करवामां आवे छे। कितनी मीठी बात, ज्ञानाभ्यास तो पोताने अर्थे करवामां आवे छे, अवसर पामीने परनू पण भलूं थतुं होय तो परनू पण भलूं करे। ये व्यवहार की भाषा, कर तो सकता नहीं है लेकिन विकल्प आता है, अब चलो अपन सब मिलके पढ़ें, अपन सब मिलके हम बताते हैं आपको, ऐसा मतलब। तो अवसर पाके उसका निषेध नहीं है, पर अभिप्राय तो अपने हित का रखे। कोई उपदेश ना सामले तो ना सामलो, ये और मजेदार है। अरे कोई जाता नहीं है, चार लोग तो आते हैं, उनको क्या सुनाना अभी है? लेकिन भैया तुम्हारा रस उसमें रस परिपाक होता है कि नहीं होता है, अपना प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं होता है स्वाध्याय का। तो कोई उपदेश ना सामले तो ना सामलो, पोते सा माटे विषाद करे, शास्त्रार्थनो भाव जानी पोतानु भलू करवू। ये लास्ट क्या बोला, शास्त्रार्थनो भाव जानी पोतानु भलू करवू। तो इस तरह से ये समझ लीजिए सम्यक ज्ञान वाला प्रकरण हुआ। अब कल से अपन ये जो मेन प्रकरण है जहां तक आने के लिए अपन इतनी सीढ़ियां चढ़े, सम्यक चारित्र अर्थे तति प्रवृत्ति मां अयथार्थता। सम्यक चारित्र के लिए जो प्रवृत्ति देखना सुमिल, अयथार्थता तो मान्यता की बताएंगे लेकिन उसको भी पंडित जी प्रवृत्ति शब्द से बोलते कि सम्यक चारित्र में क्या भूल करता है ये जीव, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, इस भाषा में वो अपन कल और परसों दो दिन में इसको लेंगे। अभी का समय हो गया इसलिए यहीं।